ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ஹம் சரித்திர கோ நிர்மாண கர்னே கே லியே, சரித்திர கா ஆதர்ஷ கே ரூப் மே ஹம் கிசி தேவ் சரித்திர கோ, பகவான் ராம் கே சரித்திர கோ ஹிருதய பர் ரக்தே, சத் மகாபுருஷோ கே சரித்திர கோ ஹம் அப்னே ஹிருதய பட்டல் பர் அங்கித் ரக்தே, தாக்கி உஸ்ஸே ஹம் ஹமே அப்னே சரித்திர நிர்மாண கே லியே கிஸ் விஷய மே கிஸ் மகாபுருஷ கா கேசா திவ்ய ஆச்சரண ரஹா ஹே யே சமஜ் கர்கே யே பிரேரணா லே கர்கே ஹம் அப்னே ஆப்கோ ஆகே படா சக்தே. இசிலியே மே உபநிஷத் கி யே பாத் ஹமேசா யாத் ரக்னி சாஹியே, நா விரிதோ துஷ்சரித்ரானாம் நா சாந்தோ நா சமாஹிதா நா சாந்த மனுஷோ வா விப்ரஜ்ஞானம் ப்ராப்னுயாத். கேவல் ஹம் யே சோச்சே கி புத்தி கே ஸ்தர பர் பௌத்திக பல் சே மே ப்ராப்த கர் லூ, மே ப்ராப்த கர்கே சுகி ஹோ ஜாஊ. அச்சா ஏக ஜீவன் கா லக்ஷ்ய ஹே சுக கோ பானா, ஹே நா, சாந்தி கோ பானா. ராவண் பஹத் புத்திமான் தா, உஸ்னே சோச்சா கி சாந்தி சீதா சமாதிதா, சீதா ரூபி சாந்தி ஹே, ஔர் ஜீவன் மே ஹர் கிசி கோ சாந்தி சாஹியே. ராவண் நே சோச்சா கி மே பி பலாத் பஹத் ஜ்ஞானி தா, உஸ்னே சோச்சா கி ஹடாத் பலாத் மே சாந்தி கோ பிராப்த கருங்கா, அப்னே பாஸ் ரக்குங்கா, ஔர் உஸ்கே லியே சல் கியா, சீதா கா ஹரண கியா, ஔர் ஹரண கர்கே லங்கா மே லே ஜா கர்கே உஸ்னே ரக்கா கா, போலே அசோக் வாட்டிகா மே ரக்கா, ஔர் அசோக் வாட்டிகா மே ரக் கர்கே வோ பிரசன்ன ஹோ கியா கி பஸ் அப் சீதா மேரே பாஸ் ஹே, சீதா மேரே பாஸ் ஹே இஸ் பாத் கி பிரசன்னதா உஸ்னே பிராப்த கர் லி. ஔர் வாஸ்தவ மே சீதா பிரசன்ன ஹே யா நஹி, அசோக் வாட்டிகா மே சீதா பிரசன்ன ஹே நஹி ஹே, ஆப் ஜானதே கி சீதா ஜி வஹா பிரசன்ன நஹி ஹே. தோ சீதா ஜி பிரசன்ன நஹி ஹே ஔர் பிரசன்னதா கா தம்ப கிஸ்னே கர் லியா, ராவண் நே கர் லியா, அஹங்கார் ஹோ கியா கி ஹம் சீதா மேரே பாஸ் பிரசன்ன ஹே. தோ ஆப் புத்தி கே பல் பர் பலாத் ஹடாத் ஆப் யே சோச்சே கி பஸ் மேரே பாஸ் கியா நீ ஹே, ஜ்ஞான் ஹே மேரே பாஸ், மேரே பாஸ் யே சப் சீஜே ஹே, இஸ்ஸே ஆப் அப்னே தம்ப கோ புஷ்ட தோ கர் சக்தே ஹே, உஸ்கி வோ தோ ஹோ சக்தி பர் வாஸ்தவிக்தா மே உஸ்ஸே பிரசன்னதா நஹீ ரஹ சக்தி, சாந்தி நஹீ ரஹ சக்தி. ஔர் சீதா வாஸ்தவ மே பிரசன்ன ஹே, தோ போலே கஹான் பிரசன்ன ஹே, சீதா ஜி கி பிரசன்னதா கஹான் தேக்னே கோ மில்தி ஹே, சீதா ஜி கி பிரசன்னதா தோ தேக்னே கோ மில்தி ஹே மித்லாபுரி கி புஷ்ப வாட்டிகா மே, ஹே நா, மித்லாபுரி கி புஷ்ப வாட்டிகா மே சகியோ கே சங் ஜப் ஸ்ரீ சீதா ஜி கிஷோரி ஜி ஜா ரஹி ஹே, தோ உன்கி சுந்தர்தா ஔர் உன்கி பிரசன்னதா கோ தேக் கர்கே ஸ்வயம் ராம நே பி கஹா சபி உபமா கபி நே ஜுடா ரஹி. கோஸ்வாமி துளசிதாஸ் ஜி கேத்தே ஜித்னி துனியா கி உபமாயே ஹோத்தி ஹே வோ சப் ஜூட்டி ஹோ கயி. போலே க்யூ கி கவியோ நே உன் உபமாவோ கோ சாரி கி சாரி உபமாவோ கோ கிஸ்கே சாத் ஜோட் தியா, தேவ் குமாரியோ கே சாத் மே ஜோட் தியா, கன்யாவோ கே சாத் மே ஜோட் தியா, இஸ்லியே சபை உபமா கபி நே ஜுடாரி, கோயி உனே உபமா தேனே கே லியே உன்கே பாஸ் மிலா நஹி. தோ உன்ஹோனே ஆகிர் மே க்யா கஹா, சுந்தர் தாகர் கரஹி சுந்தர், ஜோ சுந்தர்தா கோ பி சுந்தர்தா பிரதான் கர்னே வாலி ஹே, ஐசி சுந்தர்தா ஐசி பிரசன்னதா ஜிஸ்ஸே ஜிஸ்மே ஹே, போலே வோ கௌன் ஹே, ஔர் சீதா ஜி ஜின்கி தாரிஃப் ஸ்வயம் பகவான் ராம் கரே ஜின்கி பிரசன்னதா கி. தோ சீதா பிரசன்னதா மே ரஹி தோ கஹான் ரஹி, புஷ்ப வாட்டிகா மே. போலே க்யூ க்யூகி வஹா கோயி தம்ப நஹி ஹே, வோ ஸ்வதந்திர ஹே, அப்னி இச்சா சே நிஜ பிரசன்னதா சே ரஹ ரஹி ஹே, வஹா கோயி தம்ப நஹி ஹே, திகாவா நஹி ஹே, க்யூ நஹி ஹே. யே ஜனக்புரி மே பிரசன்னதா கா காரண க்யா ஹே, யே விதேய ராஜ் கி நகரி ஹே, யஹாம் விதேய ராஜ் ஹே, அர்த்தாத் ஜிஸ்ஸஹா ஜஹா தேஹா அபிமான் சமாப்த ஹோ கியா ஹோ. ஜ்ஞானி கி பஹச்சான் க்யா ஹே, जहां देह भाव नष्ट हो गया हो, देह भाव छूट गया हो, ये विदेह राज है, वहां देह की कोई बात नहीं है। देह से ऊपर उठ करके, देह से अलग होकर के, जहां केवल एक प्रसन्नता देखने को मिलती है, ये भक्ति रूपी सीता है, शांति रूपी सीता है। तो जीवन में हमें प्रसन्नता की प्राप्ति मिले, सुख की प्राप्ति मिले, सुंदरता की प्राप्ति मिले, जीवन में शांति की प्राप्ति मिले, वो भक्ति की प्राप्ति मिले, वो किससे होगी? बोले किस इससे होगी कि जब हमारे जीवन में चरित्र होगा। महाराज विदेहराज जनक का चरित्र कैसा है, आचरण कैसा है, वो कैसे ज्ञानी है? वो नित्य सत्संग करते हैं, तत्व ज्ञानियों का सम्मान करते हैं, वो विदेहराज है, वो अच्छी तरह से ये बात समझ, तत्व क्या है उसके लिए उनके अंदर निष्ठा है, जिज्ञासा है, और वो वैराग्य से युक्त है। तो प्रसन्नता वहां मिली, अशांति वहां मिली, तो जहां वैराग्य है अर्थात इंद्रियों के भाव से, चरित्र माने जिसने सद असत के विचार पूर्वक अपनी इंद्रियों को, अपने आचरण को संसारिक राग से हटा करके वैराग को प्राप्त कर लिया हो, वो चरित्र है नारायण, वो एक चरित्र है जिसके इंद्रियों में संयम है। तो उपनिषद ये कहती है ना विरतो दुश्चरित्राणाम, जिसके पास चरित्र नहीं है, अर्थात केवल बातें करने से भी नहीं होगा, केवल भावना करने से भी नहीं हो, और केवल कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो केवल कर्म में लगा हुआ जी, कर्म करना मेरी, बहुत से लोग कहते हैं हमें ज्ञान मैन से क्या लेना, ये सब बात की बात है, हम तो केवल कर्म करना जानते हैं जी, केवल कर्म करते हैं। परंतु केवल कर्म करना भी सब कुछ नहीं है नारायण, कर्म करना चाहिए, पर कर्म करते हुए ये बात निश्चित रूप से समझना चाहिए, हम कर किसके लिए रहे, ये हमारे करने का अर्थ क्या है, हम किसके लिए कर रहे। कर्म करते, कर्म करना चाहिए, बहुत से लोग कह देते हैं कि केवल हम तो कर्मवादी लोग हैं, हमें कर्म पर विश्वास है, हम तो अपने कर्म पर भरोसा रखते हैं और कर्म में डटे रहते हैं। तो केवल कर्म से भी बात नहीं बनती है नारायण, कर्म से ही सबको, अच्छा एक बात याद रखो, सब जीवन में सफलता चाहते हैं, कौन व्यक्ति है कि असफलता चाहता हो, सब जीवन में सफलता चाहते हैं, और उस सफलता की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। ये हमने अपने कर्म से, ये कर्म से ही, परिश्रम से ही मिलने वाला होता तो एक मजदूर जितना पसीना बहाता है उसको सब कुछ मिल गया होता, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मजदूर इतना दिन रात मेहनत करता है, दिन रात परिश्रम करता है और बहुत पसीना बहाता है, पर देखने में आता है कि मजदूर के पास वो सब कुछ नहीं होता। मकान बनाने में पसीना बहा मजदूर का, मेहनत लगे मजदूर की, और मालिक उसमें जाकर आराम से, शांत से, सुख से रहता है। तो कहने का अर्थ है, यदि पसीना बहाने से ही सब कुछ मिलने वाला होता तो वो मकान फिर उसी मजदूर को मिल जाना चाहिए था, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए सब कुछ कर्म में ही नहीं है, कर्म करते हुए हमें विचार भी करना चाहिए, विद्या भी होनी चाहिए, विचार भी होना चाहिए, सद असत का विचार भी होना चाहिए। सद असत के विचार के साथ जो उपासना करते हैं वो अमृतत्वम प्राप्त, वो अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, माने उसकी मधुरता को, मिठास को प्राप्त, सफलता को, सिद्धि को प्राप्त करते हैं। और अविद्या उपासते, जो अविद्या में रहते हैं वो मृत्युतरवा माने मृत्यु को पार कर जाते हैं, प्रमाद और आलस्य से कुछ समाप्त करके वो अमृतत्व की ओर आगे बढ़ जाते हैं। जीवन में वो लोग कभी मरते नहीं है, बहुत से लोग हैं जिनका आज भी आप बड़े आदर के साथ नाम स्मरण करना चाहते, बोले क्यों, उनका ऐसा परिश्रम था, उन्होंने ऐसा कार्य किया था, उनकी ऐसी इसमें भूमिका रही है। तो कर्म से ही वो व्यक्ति का विकास होता है नारायण, इसीलिए उपनिषद कहती है जो विद्या और अविद्या इन दोनों को एक साथ जानते हैं। अब अब रह गई दोनों को साथ साथ लेकर चले, कर्म और उपासना दोनों का समन्वय होना चाहिए, दोनों को साथ में हमें लेके चलना चाहिए। ज्ञान की भाव सद असत का विवेक भी हो, विचार भी हो और कर्म भी हो। कर्म और विचार दोनों को हमें साथ में लेके चलना चाहिए, यही विद्या और अविद्या है जिसे उपनिषद कहती है। दोनों को साथ में कैसे लेके चलें, जिसके लिए बहुत सीधी सी बात है, अंध पंगु न्यास के समान। जैसे कोई व्यक्ति एक अंधा है जो चल तो सकता है पर देख नहीं सकता, और एक व्यक्ति है जो चल सकता है देख नहीं सकता। तो यदि अंध और पंगु दोनों आपस में मिल जाएं और दोनों जुड़ करके साथ चलें, तो एक व्यक्ति जो चल नहीं सकता देख सकता है, वो मार्ग दिखा सकता है, और अंधा व्यक्ति जो देख नहीं सकता है चल सकता है, वो उसे साथ लेकर चल सकता है। एक अंधे के कंधे में, अंधे के कंधे में यदि पंगु व्यक्ति चढ़ जाए तो उनके लिए यात्रा सरल और सुगम हो जाती है। उसी तरह से इन दोनों का न्यास है, इन दोनों का योग है हमारे जीवन में, उपासना का और कर्म का कहिए यही अविद्या, विचार और कर्म का कहिए, ये दोनों को ही उपनिषद कहती, इनको साथ लेकर के जो चलते हैं वो अविद्या को रूपी मृत्यु को भी पार कर जाते हैं और विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। वो सिद्धि की सफलता माने अमृतत्व माने सफलता की प्राप्ति कर लेते हैं। ये दोनों को साथ लेके चलते हैं। 11वें मंत्र के द्वारा उपनिषद हमें दोनों को साथ लेकर के चलने के लिए, जहां कर्मण्येह कुरुमाणि कहकर कहा और जहां ईशावासे इदम सर्वम ये बात हमें बताती है, वही उपनिषद हमें जीवन में हमारी सफलता का मार्गदर्शन कराती है, दिशा देती है कि हमें जीवन में कैसे जीना चाहिए, किस तरह का हमारा जीवन हो, जीवन में कर्म भी हो, कर्म के से भी हम पलायनवादी न बने, कर्म की अपेक्षा करें और विवेक और विचार की उपेक्षा करें, यह भी बात सही नहीं है। विवेक और विचार की हमारे जीवन में अपेक्षा हो और कर्म से हम पलायन कर जाएं, उसकी उपेक्षा कर दें, यह भी नहीं होना चाहिए। दोनों को हमें अपने एक साथ लेकर चलना है, चरित्र का भी निर्माण हो और विचार का भी निर्माण हो। चरित्र निर्माण के साथ विचारों का निर्माण, विचार हमारे अंदर आएंगे सद और असद के विचार से ही विचार पैदा होगा। नारायण जो सद और असद की दोनों की समीक्षा करेंगे, विचारेंगे, तब हमारे अंदर सद विचार उत्पन्न होगा। तो इसलिए विचार करो, उपनिषद जो हमें कहती है बार बार ये कहती है कि हमारे विचारों पर जो बल दिया गया है, विचार करने की बात आती है तो बोले क्या विचार करें, तो कहा कि मैं कौन हूं ये विचार करो, को हम कुत आयात मैं कहां से आया हूं ये विचार करो, मैं कौन हूं ये विचार हो करो, ये मेरा पिता कौन, मेरी माता कौन, कोमे तात कोमे जननी, कौन मेरी माता है कौन मेरी जननी है, और मैं क्यों आया हूं, मैं आया क्यों, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इन सब बातों पर विचार करो। विचार करो कहा तो ऐसा विचार नहीं है कि कोई विचार करो कहा तो विचार करने का, विचार करने को कहा, उसे सामने डाल पर बैठा कौवा दिख गया तो वो देखने लगा इस कौवे के मुंह में कितने दांत हैं, वो विचार करने लग गया है, तो उस विचार का तो कोई अर्थ नहीं है ना। तो ये बात भी सही है कि विचार करो कहा जाए तो हमारे अंदर कुछ न कुछ, कुछ न कुछ हमारे मस्तिष्क में चलता ही रहता, चलता ही रहता। ईमानदारी से सोचो तो सारे दिन में आपके दिमाग में जितने विचार आते हैं, उन विचारों में कितने विचार सार्थक हैं, कितने उपयोगी हैं, यदि आप उनको सोचने लगे। बहुत से लोग कहते हैं जब हम पूजा करने बैठते हैं, जब करने बैठते हैं तो माता जी हमारे दिमाग में तरह तरह के विचार आते हैं, तो उन विचारों में कितना आपका उनसे वास्ता है, कितना मतलब है, कितना लेना देना है, ये सब जो अंदर आ रहे हैं, तो बोले कहीं ना कहीं आपके अंदर भरे हुए हैं ना, वो निकल रहे हैं। एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के संस्कारों से वो सब विचार आते हैं। तो इतना बड़ा जो समूह इकट्ठा हो रखा है, इसको जलाने के लिए नारायण थोड़े बहुत की नहीं, ऐसा आग लगे कि ये सारे जल करके नष्ट हो जाए, उसके लिए आपको किसकी आवश्यकता है? गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। गंभीरता से जब तक जीवन के लिए आप स्वयं से अपने आप के लिए गहन गंभीर नहीं बनेंगे, तब तक आपको उसका कोई परिणाम प्राप्त नहीं होगा। सचमुच जिस समय हम अपने लिए अपने आप से दृढ़ गंभीर हो जाएंगे, गहन गंभीर हो जाएंगे, गंभीरता से हम सोचने लगेंगे वास्तविकता में मुझे ये जानना ही है, ये समझना ही है, ये केवल प्रेमपुरी आश्रम सत्संग में बैठ करके आप सोच रहे हो, इतने से आपकी बात बन जाएगी। एक घंटा हम जाके विचार करते हैं, ब्रह्म विचार करते हैं प्रेमपुरी में जाकर के, तो इससे हमारा काम सद जाएगा, इससे हमारी बात बन जाएगी। नहीं नारायण, यहां से तो केवल आपको एक दिशा मिलेगी कि आपका विचार जो चल रहा है वो बिल्कुल ठीक दिशा में चल रहा है या गलत दिशा में चल रहा है, आप भटक रहे हैं या आपके रास्ते पर आप जो चल रहे हैं ठीक चल रहे हैं, वो केवल केवल इतना ही आपको इशारा मिल सकता है। परंतु इसमें आगे बढ़ना आपका काम है, आपका काम है कि आप बोले बहुत, कोई आदमी कहे कि हम ये विचार कब तक करें भाई, कब तक हमको ये सब करना पड़ेगा? जब तक ये जीवन है, जब जीवन को विचार करने के लिए आप बैठोगे तो आपके पास आपको लगेगा कि इतना कम समय रहे मेरे पास, इतना कम समय है और इतने से कम समय पर इतने महानतम कार्य को मुझे करना है, तो मेरे पास टाइम ही कहां है कि जो मैं अपनी चेतना को, अपनी सहजता को, अपनी सजगता को इधर उधर भटकाऊं, अगल बगल झांकूं ताकूं, इसके लिए मुझे टाइम कहां है, फुर्सत कहां है? परंतु आज हमारे पास, जब हम स्वयं के लिए गंभीर नहीं होते, मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, मेरा बगल वाला क्या कर रहा है, मेरे सामने वाला क्या कर रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, किसकी बहू ने क्या किया, किसके बेटे ने क्या किया, किसकी माँ ने क्या किया, किसके पिता ने क्या किया, हम इन सब सांसारिक बातों को, सामाजिक बातों को, पारिवारिक बातों को, कौटुंबिक बातों को, और ये और नहीं तो इंद्रिय विघात अपने शरीर की दंत कथाओं को लेकर बैठ जाते हैं। इसीलिए कहा है इंद्रिय ग्राम, ये सब इंद्रियों का इस शरीर में बहुत बड़ा गांव बसता है और इस गांव में कथा चलती, इंद्रिय विघात माने इंद्रियों की अपनी अपनी कथाएं चलती, आंखों की अपनी कथा, कान की अपनी कथा, मुंह की अपनी कथा, नाक की अपनी कथा, और इंद्रियों के कथा को सुन करके, इनके इनकी बात को मान करके, इनकी पूर्ति करने में ही हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। तो इसलिए अब छोड़ो, सब इन बातों को छोड़ो, इंद्रिय विघात इनको त्यागो, और त्याग करके आप अपने आप को, अपने आप से सजग हो जाओ, गंभीर हो जाओ अपने आप में, और विचार करो। और त्याग करके क्या करो? बोल त्याग करके आगे बढ़ो, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ किस? परिश्रम करो, और परिश्रम करते हुए विचार करो। विचार यही करना है, को हम मैं कौन हूं, अपने स्वरूप का निरूपण, स्वरूप जो आपको आपका बताती है, उस स्वरूप पर विचार करो, उसको अपने आप को, अपने मैं को उस परमात्म स्वरूप में, परमात्मा को अपने आत्म स्वरूप में विचार करो, उसको देखने की, समझने की, उसके लिए चेष्टा करो, और यही हमारे जीवन में अविद्या से पार उतरने का, विद्या से अमृत को प्राप्त करने का मार्ग है। इसीलिए विद्याचा अविद्या च दोयम भयम सह अविद्या मृत्यु त्रवा विद्या मृतम अनुपश्यते। तो इसलिए अविद्या को पार करना है, सबसे पहले मृत्यु को जीत करके हमें संसार में जीना है। इसीलिए कबीर आदि ने कहा ना, जिस जग मरने से जग डरा, जिस मरने से संसार डरता है, मैं उस मरने से डरता नहीं हूं, बल्कि उसको मार करके जीता हूं। मृत्यु को मार करके हमें जीना है, मृत्यु को मृत्यु के भय से भयभीत होकर जीवन जीना नहीं है। मेरी मौत हो जाएगी, मैं मरूंगा, मैं डरूंगा, इस डर से हमें जीवन जीना नहीं है। जीवन मृत्यु को मार करके अभय होकर के हम संसार में जिए। बोले भयुक्त जीवन भयाक्रांत, जो भय से आक्रांत है वो हमेशा अशांत है, उसमें क्लेश है, दुख है, वो कहां सुखी हो सकता है, उसे सहां देखे वहां अपनी मृत्यु नजर आती है, जैसे कंस आदि को आती थी। वो हमेशा जब देखता था तो तब उसे अपनी चारों ओर मृत्यु ही मृत्यु दिखाई देती थी, इसलिए उसे कुछ कुछ अच्छा नहीं लगता था। तो कहने का अर्थ ये है कि जहां भय है, बोले किसका सबसे बड़ा भय है, मृत्यु का। इस भय को हमें जीवन से निकालना, जीवन कैसा हो, निर्भय हो, निर्भ्रांत हो, उसमें कोई भ्रांति नहीं। भ्रांति कहां होती है, जहां कुछ अंधेरा होता है वहां भ्रांति होती है, जहां कुछ अंधेरा नहीं है, जहां उजाला ही उजाला है, वहां भ्रांति होने की कोई संभावना नहीं रहती है। इसलिए जीवन में भ्रांति नहीं हो, भ्रम नहीं हो। और भ्रम में हमको है, हम सुनते हैं जब तब तो लगता है कि बिल्कुल निर्भ्रांत है, और वैसे जब कोई बात हो, किसने भगवान को देखा, किसी ने देखा थोड़ी है, सुनाई तो है ना, फिर कहीं न कहीं मन में कोई न कोई किंतु और परंतु आकर जहां भटक जाते हैं, वहां जीवन अशांत हो जाता है। इसलिए मृत्यु त्रवा, हमें मृत्यु को पार करना है। आलस्य और प्रमाद को जीवन में समाप्त करो, आलस्य छोड़ो, अपने लिए गतिशील बनो, अप्रमादी जीवन हो। कोई प्रमाद कहते हैं कि अलसाना, कि आधा उसमें प्रमाद का अर्थ होता है जिसमें रस नहीं मिले। प्रमाद कहाँ होता, माला भी जप रहे हैं तो गुरुजी ने नियम दिया है, इसलिए चलो जल्दी जल्दी माला पूरी करनी है, और 11 माला का नियम पकड़ाया, फटाफट 11 माला हुई करने गया, हो गया। जैसे आपका रोज सुबह का नियम है, पूजा करना, पाठ करना, जप करना, ध्यान करना, जितना भी आपने अपना नियम उठाया हुआ है, आप जब कर लेते हैं ना, उसके बाद लगता है हाँ हो गया, शांति हो गई। माने एक बोझ था वो सिर के ऊपर से उतर गया, तो बस अब हम आराम से हो गए। ऐसा यदि रस लेकर के जीवन में रस आ गया होता तो वो कर्म हमारे लिए बोझ बोझ नहीं लगता, तब हमको वो नहीं लगता, उसमें एक ऐसा रस बना रहता है कि सारे जीवन धीरे 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 इतने डूब गए कि उनसे कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि हो जाए जल्दी से, निभ जाए बस। तो कहने का अर्थ मेरा तो ये है, प्रमाद ये है आलस्य। तो इसी तरह से कर्म में हमारा प्रमाद है, उस सब को छोड़े। कर्म हमें आगे बढ़ने की उन्नति देते हैं। इस प्रकार भगवान के भाव से मन में भगवान की भावना हो, हृदय में उपासना हो और शरीर में कर्म हो, बस यही कर्म और उपासना विद्या और अविद्या है। अविद्या के द्वारा मृत्यु की, कर्म के द्वारा मृत्यु से पार उतरना है, और विद्या के द्वारा, उपासना के द्वारा उस अमृत रस की हमें प्राप्ति करनी है। 11वें मंत्र के द्वारा हमें ये समझाया गया। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वक्तव्य को अभी को इस विचार विराम देते हैं, शेष चर्चा कल करेंगे। एक मिनट के लिए भगवत नाम स्मरण कर ले। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण भजमन नारायण 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 भजमन बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।